दूसरा राजा अध्याय 13। अध्याय 13 में हम फिर से उत्तरी राज्य इसराइल की ओर चलते हैं, जिस पर यहोआहाज राज्य कर रहा है। इसराइल में यहू की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यहोआहाज इसराइल के समरिया में राज्य करने लगा और उसने 17 वर्ष राज्य किया। अध्याय 13:2। और उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। मैंने पहले भी बताया था कि इसराइल को कोई अच्छा राजा नहीं मिला था। इसराइल के प्रत्येक राजा के लिए कहा गया, उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। उनमें से एक भी परमेश्वर के पीछे नहीं चला। कितने दुख की बात है। अध्याय 13:2-6 अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम, जिसने इसराइल से पाप कराया था, बछड़े की पूजा, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनको छोड़ न दिया, इसलिए यहोवा का क्रोध इसराइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको आराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेनहदद के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इसराइल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। इसलिए यहोवा ने इसराइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे आराम के वश से छूट गए और इसराइली अगले दिनों की नाई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तो भी वे ऐसे पापों से न फिरे जैसे यरोबम के घराने ने किया और जिनके अनुसार उसने इसराइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे अन्य जातियों की आराधना स्थल में और शमरोन में अशेरा भी खड़ी रही। इस तरह लोग वास्तव में उत्पीड़ित किए गए। यहोआहाज की मृत्यु का वर्णन पद 8 में मिलता है। अध्याय 13:8। यहोआहाज के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अब हम वापस आते हैं। हमने उसकी मृत्यु देखी, परंतु हम अध्याय 14 में फिर यहोआहाज के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसे याद रखें। हमने यहां उसकी मृत्यु देखी, परंतु जब हम राजा अमसया के बारे में पढ़ेंगे तब यहोआहाज के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वे संबंधी थे। हम फिर से वापस यहोआहाज के पास आते हैं। अध्याय 13:12। योआश के और सब काम जो उसने किए और फिर वीरता से वो यहूदा के राजा अमसया से लड़ा, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? इसके बारे में इतिहास में नहीं है, परंतु अगले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम एलिशा और उसकी मृत्यु के बारे में देखेंगे। अध्याय 13:14। और एलिशा को वो रोग लग गया जिससे वो मरने पर था। तब इसराइल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोक कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इसराइल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। योआश अभी भी राजा है, परंतु उसकी मृत्यु को हम देख चुके हैं, पर यहां मुख्य विषय एलिशा है। जब एलिशा बीमार था तब राजा योआश उससे मिलने आया। ये मुझे बड़ा विचित्र लगता है। जहां तक पुराने नियम की बात है, दो विशिष्ट मनुष्य हैं जो चमत्कार में बड़ा विश्वास रखते थे, एक एलिशा और दूसरा एलिया। जब एलिया स्वर्ग में उठाए जाने को था, उसने एलिशा से कहा, तू क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, मैं उस आत्मा का जो तुझ पर है दोहरा बाग चाहता हूं। उसने कहा, यदि तू मुझे जाते हुए देखने पाए तो ये हो जाएगा। यदि तू ना देख पाए तो ऐसा ना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एलिशा वहां था और उसने एलिया को जाते देखा और उसका जीवन चमत्कारों का जीवन हो गया। परमेश्वर ने एलिशा से अजीब चमत्कार कराए। वो बड़ा ही विश्वासी जन था, परंतु वचन का ये विशेष पद कि एलिशा को वो रोग लग गया जिससे वो मर गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महान विश्वासी लोग भी बीमार पड़ते हैं। आश्चर्यजनक विश्वास रखने वाले भी मर जाते हैं। ये कहना मूर्खता है कि रोग या मृत्यु विश्वास की कमी का परिणाम है। मृत्यु सब पर आती है। आपने कुछ लोगों को सांप का तेल बेचते देखा होगा कि वो हर प्रकार के दर्द की औषधि है। इसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र में भी लोग हैं जो मसीह जनों की सब समस्याओं का समाधान के लिए घूमते हैं, और वे उन लोगों को जो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं अपना मंत्र देते हैं कि लिखा है, सब बातों में प्रभु की प्रशंसा करो। यदि तुम सब बातों में प्रभु की प्रशंसा करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब लोगों ने सब बातों में प्रभु की स्तुति करना आरंभ कर दी, तब समस्याएं समाप्त हो गई। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसी समस्याएं भी है जिसके लिए प्रभु की स्तुति अब से अनंत काल तक की जा सकती है। वे फिर भी रहेंगी, और मैं समझता हूं कि कुछ बातों के लिए प्रभु की प्रशंसा करना निरी मूर्खता है। मेरे चाचा शराब पीने के कारण मर गए, प्रभु की स्तुति हो। नहीं, ये तो दुख का कारण है कि वो पीने के कारण मर गए, परंतु लोग चंगा करने वाली दवा बेच रहे हैं। आप अधिक विश्वास रखेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। पूर्ण विश्वास के द्वारा आप समृद्धि हो जाएंगे आदि वे ऐसे मंत्र देकर चले जाते हैं। लोग उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं और मंत्र कार्य नहीं करता। जब वे दूसरों के साथ ये बात करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। वे प्रभु की स्तुति करते हुए चले जाते हैं और सोचते हैं कि मंत्र ने काम किया, परंतु अंत में उन्हें पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर के मार्गों को कौन जान सकता है? मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं कि मैं परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझता। इससे आपको आश्चर्य न हो। यदि मैं यहां खड़ा होकर आपसे कहूं कि मैं परमेश्वर के मार्गों को समझता हूं, तो मैं प्रथम श्रेणी का झूठा ठहरूंगा। यदि कोई ये कहे मैं परमेश्वर के मार्गों को जानता हूं, तो सच ये है कि वो कुछ नहीं जानता, और उसका कहना परमेश्वर के वचन के विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यशया 55:8-9 पद, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। रोमियो 11:33 पद, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। मैं खुलकर स्वीकार करता हूं कि मैं परमेश्वर के भेदों को नहीं जानता। मैं नहीं जानता क्यों परमेश्वर अच्छे मसीहों को बीमार होने देता है, उन्हें दुख सहने देता है, क्यों बहुत से विश्वासी साइबेरिया और चाइना में कैद हैं और अपने विश्वास के कारण यातना सह रहे हैं। मैं नहीं जानता क्यों योहन्ना का सिर काटा गया और पत्रस को सिर नीचे करके क्रूस पर चढ़ाया गया और पौलुस का सिर काट डाला गया तथा आरंभिक कलीसिया के प्रेरित शहीद हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। यदि परमेश्वर चाहता कि हम सब धनी और समृद्ध हो, तो वो वचन में साफ साफ घोषणा करता और आज मसीहों में सबका स्तर बराबर होता। ये दुख की बात वरन एक त्रासदी है कि इस तरह का सिद्धांत फैलाया गया है। लोग इसे स्वीकार करने के लिए उतावले हैं। मैं बताता हूं कि इन सिद्धांतों का साइबेरिया के मसीहों पर कोई असर नहीं हुआ है। चाहे आप वहां जाकर उनसे कहें, परमेश्वर चाहता है कि आप सब समृद्ध और धनी हो, आप सबको कैडलेक गाड़ी में चलना चाहिए, उनके कष्टों में उन्हें मसीह के प्रति अधिक समर्पित और मजबूत किया है। मसीह के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें उस दासत्व में पहुंचा दिया जिसको वो साइबेरिया में भोग रहे हैं। वहां ऐसे अनेक विश्वासी हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कार में चलने वाले विश्वासियों से यदि प्रभु कार ले ले तो उनका समर्पण क्या रहेगा। उसने ऐसा किया भी है। यहां यही तो समस्या है कि ऐसी स्थिति में समर्पण विलोप होने लगता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत लोग जो इस विश्वास पर चलते थे, कठिन परिस्थितियां आने पर उनका विश्वास टूट गया। एलिशा भी बीमारी के कारण मर गया था। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर उसे प्रेम नहीं करता था या वह उसके विरुद्ध था या उसने कुछ गलत किया था और परमेश्वर ने उसे दंड दिया जिसके कारण वो रोगी हो गया था। ये द्वितीय श्रेणी का आत्मिकता नहीं है। परमेश्वर की सब संतान बीमार होते हैं, इसलिए इस तरह की धारणा रखना ठीक नहीं है। अपने पापों को मान लो जो भी आप करते रहे हो और परमेश्वर आपको चंगा करेगा, ये भी अनुचित धारणा है। हम शीघ्र ही आयुब की पुस्तक का अध्ययन करेंगे और इस धर्म सिद्धांत के बारे में सीखेंगे। वो एलिशा के पास आया जो मरण शैया पर था, अध्याय 13 पद 15 से लेकर 21 तक। वो उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इसराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलिशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलिशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलिशा ने कहा, ये तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू आपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इसराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वो तीन बार मारकर ठहर गया और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था, ऐसा करने से तो तू आराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। एक वर्ष के बाद मोआब के दल लुटेरे देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलिशा की कब्र में डाल दिया और भाग खड़े हुए और एलिशा की हड्डियों को छूते ही वो जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। ये मुझे रोमांच और उत्साह देता है। इतना शक्ति एलिशा में था कि कब्र में उसकी हड्डियों से एक मृतक शरीर टकराया तो वो जीवित हो गया। अध्याय 13 पद 22 से लेकर 25 तक। यहोआहाज के जीवन भर आराम का राजा हजाएल इसराइल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उस पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने इब्राहिम इसाक और याकूब से बांधी थी उन पर कृपा दृष्टि की और ना तो उन्हें नाश किया और ना अपने सामने से निकाल दिया। तब आराम का राजा हजाएल मर गया और उसका पुत्र बेन-हदद उसके स्थान पर राजा बन गया और यहोआहाज के पुत्र यहोआश ने हजाएल के पुत्र बेन-हदद के हाथ से नगर फिर ले लिए जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। योआश ने उसको 3 बार जीतकर इसराइल के नगर फिर ले लिए।